حمدا نسأل الله رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وزرات. خواتین و حضرات, ایک لفظ ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور یقینی طور پر ہم اس کے مفہوم سے واقف ہیں, لیکن وہ مفہوم جس سے ہم واقف ہیں یا تو وہ اصطلاحی معنی ہیں یا لغتی معنی ہیں اس کے. روحانیت میں فقیر لوگ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے معنی کیا اخذ کرتے ہیں, وہ شاید ہم سب کے لیے ایک نئی انفارمیشن کی حیثیت رکھتا ہے. مولانا روم نے لفظ ظلم, ظلم لفظ روز استعمال ہوتا ہے ہماری گفتگو میں, اس ظلم کو جو ڈیفائن کیا وہ کمال کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کے برموقع محل سے ہٹا دیں تو وہ ظلم ہوگا. مٹی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور جیسے یہاں ایک بار انسان کی تخلیق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے, اور اس کی تمام تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ کہاں کہاں سے وہ مٹی اکٹھی کی گئی, اس کو اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا, پھر اس مٹی کو گوندا گیا, اس کو ڈو بنایا گیا, اس میں کتنا وقت لگا, پھر اسے خشک ہونے کے لیے رکھا, اس میں کتنا وقت لگا, یہ سب تفصیل سے یہاں بات ہوئی تھی. اب یہ مٹی جو ہے یہ انسان کا بنیادی عنصر ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی. مٹی اپنے مقام پر ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی تعرض نہیں ہوتا, لیکن اگر یہی مٹی ہوا کے زور سے اڑ کر انسان کے کپڑوں پر جمع ہو جائے, ہمارے بیٹھنے کی جگہ پر جمع ہو جائے, تو ہم اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور اسے وہاں سے فوری طور پہ صاف کر دیتے ہیں. صرف مقام کے بدل جانے سے مٹی کی حیثیت تبدیل ہو گئی, تو مٹی کا اپنے مقام سے ہٹ کے کپڑوں پر آ جانا یا کسی اور چیز پر چلے جانا, وہاں جا کے جم جانا, وہ ظلم ہے. یہ مولانا روم نے اس کو یوں ایکسپلین کیا. جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے ضد پر, ضد کے مارے ہوئے نہیں یا ضد سے نہیں, بلکہ ضد پر. ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. امارت ہے تو غربت ہے, تندرستی ہے تو بیماری ہے, ظلم ہے تو عدل ہے. تو جس طرح ظلم کسی چیز کو اس کے برمحل وقوع سے ہٹا کر رکھنا یا دیکھنا وہ ظلم ہو جائے گا, اسی طرح عدل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو کسی بھی نعمت کا جتنا حق ہے, وہ نعمت اس کے حق کے مطابق اسے دے دی جائے تو وہ عدل ہے, اور اسلام اسی پر زیادہ زور دیتا ہے. انسان کی زندگی میں عدل کو اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے, میں روحانی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں, دنیا بھی نہیں, کہ اگر انسان ہر چیز کو عدل سے تقسیم کرے تو تمام چیزیں بہت خوبصورتی سے چلتی رہتی ہیں, زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے. ہر انسان کے اندر رب تعالیٰ نے کنسنٹریشن پاور کی ایک مقدار دی ہے, کنسنٹریشن توجہ, یہ ایک مخصوص مقدار میں موجود ہے ہر شخص میں. وہ مقدار کے لحاظ سے ویریبل ہے کہ کسی میں زیادہ کسی میں کم, لیکن ہے سب میں. انسان جب اس توجہ سے عدل سے بانٹتا ہے اپنی زندگی میں تو دین بھی چلا لیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی وہ چلا لیتا ہے. ایک توازن قائم ہو جاتا ہے کہ ایک دونوں ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں دنیا ایک میں دین, اور دونوں ہاتھ برابر رہتے ہیں اگر عدل سے اپنی توجہ کو وہ بانٹ سکے. اور اگر کہیں وہ اپنی ذات پر ظلم کرے اور توجہ بانٹنے میں عدل سے کام نہ لے تو زندگی توازن سے ہٹنے لگتی ہے. اور توجہ ایسی چیز ہے کہ ہم جس طرف زیادہ توجہ دے دیں گے وہ پہلو ہمارا زیادہ اجاگر ہونے لگے گا. بالکل اسی طرح کہ ہمارے گھر کے لان میں پھول بھی لگے ہوتے ہیں, بغیر پھول کے پودے بھی ہوتے ہیں, کیکٹس جیسا پودا بھی ہوتا ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں, ہم اور گھاس بھی لگا ہے, درخت بھی ہیں پھلدار. ہم اگر اپنی توجہ پھلدار درختوں پر زیادہ مرکوز کر دیں تو چونکہ مقدار تو توجہ کی محدود ہے ہمارے پاس, تو پھلدار درخت تو پھلنے پھولنے لگیں گے لیکن پھول اور گھاس اور دوسرے پودے اس طرح سے نہیں پھل پھول سکیں گے. اگر ہم پھولدار پودوں پر زیادہ توجہ دے دیں گے تو باقی چیزیں اگنور ہونے لگیں گی اور پھول والے پودے زیادہ پرورش پا جائیں گے. تو اسی طرح ہماری اپنی زندگی میں اگر تو ہم نے توجہ مرکوز کر دی اپنی روح پر کہ ہم اپنی روح کو پالیں تو روح ہمیں پلنے ہماری پلنے لگے گی, اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فقیر ہے, یہ درویش ہے, یہ ولی اللہ ہے, تو روحانیت میں ہمیں اضافہ ہو جائے گا. اگر ہماری تمام تر توجہ مرکوز ہو جائے ایک پوائنٹ پر کہ قرب الہی چاہیے, دیدار رب چاہیے, اللہ کی دوستی چاہیے, تو پھر لا محالہ ہماری توجہ ہمارے جسم سے دنیاوی کاموں سے ہٹ جائے گی اور ہم ادھر کو روانہ ہو جائیں گے. بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے پاس گئے, کسی کو مرشد مانا, انہوں نے ہم پہ توجہ ڈالی, شروع میں جو میں پڑھتا تھا اسے مزہ بھی بہت آتا تھا, لطف بھی بہت آتا تھا اور ترقی بھی بہت ہو رہی تھی. میں محسوس کرتا تھا کہ روحانیت کی راہ پر میں سرپٹ دوڑتا چلا جا رہا ہوں, مقامات طے کر رہا ہوں. लेकिन कुछ अरसे से वो बात नहीं रही। वो मुर्शिद का फॉल्ट नहीं है, ना उसके पढ़ने में कोई कमी आई है, पढ़ तो वो पहली तवज्जो से ही रहा है, लेकिन हो ये क्या है कि उसकी तवज्जो दिन भर के एक मेजर हिस्से में दुनियावी मालूजर की तरफ चली गई है। यूं समझिए कि लॉन में लगे हुए कैक्टस के पौधे पर चली गई है तो जो ज्यादा, अब वो कांटेदार पौधा परवरिश पा रहा है और फलदार या फूलदार पौधे उन पर से तो जो हट गई है तो वो फूल देना बंद हो गए हैं। वो सारा तवज्जो का खेल है। अब मसला यह है कि रब ताला ने दुनिया में और माले दुनिया में कशिश इतनी रखी है कि हमारी तवज्जो रहती ही उधर है, और उसका नतीजा यह होता है कि जब रब की तरफ हमारी तवज्जो नहीं, हर वक्त उधर को मतवज्जो नहीं रहते तो हमारा वो पहलू कमजोर होने लगता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि रूहानियत में हम बहुत आगे चले जाएं, तो दिन भर काम तो हम अपना करते रहें लेकिन सोचते रब के बारे में रहें, सोचते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रहें, सोचते हम कलाम इलाही के बारे में रहें, तो नतीजा ये होगा कि हम लाशौरी तौर पर उस पर गौर व फिक्र करने लगेंगे, और जो ही गौर व फिक्र के दरवाजे हम पर खुलते हैं हम उस राह पर चल निकलते हैं। ये जो दुनियावी माल उजर है, मैं इससे पहले भी यहां शायद एक या दो इतवार पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम रब ताला से हर वक्त वो चीज मांगते हैं जिसको वो सबसे हकीर समझता है, कि दुनिया और माले दुनिया अल्लाह के नजदीक सबसे हकीर तरीन चीज है, और यही वजह है कि हम में से कोई आदमी कितनी ही एफर्ट क्यों ना कर ले, कोई एक लम्हा और एक घड़ी नहीं निकाल पाएगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की दुआ रब से मांगी हो। तो हम रब ताला से सबसे हकीर चीज मांगते रहते हैं। गालबन अगर मुझे सही याद है तो जनाब हाफिज शिराजी साहब ने एक शेर कहा था जिसका मतलब ये था कि सारे जहान की माल जर और मताए दुनिया पूरे जहान की अगर जमा कर ली जाए तो भी उसकी कीमत इतनी नहीं बनती कि कोई इंसान एक लम्हे के लिए उसके मिलने पर खुश हो सके या उसके जाया हो जाने पर एक लम्हे के लिए गमगीन हो जाए। ये हाफिज शिराजी ही हैं गालिबन जिनका वो शेर है पर्शियन का। ये माले दुनिया वाकईतन इतनी हकीर चीज है कि इस लायक ही नहीं है कि इसके मिलने पर आदमी खुश हो जाए या इसके खो जाने पर एक लम्हे के लिए गमगीन हो। इसी तरह हम लोग, ये मैं अक्सर यहां गुफ्तगू में अर्ज करता रहता हूं आपके खिदमत में, कि हमने अजीब रवैये बनाए हैं कि हम फुकरा और दरवेश जिन्होंने मकाम ही पाया है माले दुनिया को तर्क करके, दुनिया को हकीर जानकर, माले दुनिया को हकीर जानकर ये मकाम पाया है, हम उनके पास जाते हैं और जाके दुनिया ही की दुआएं कराते हैं। एक अजीब चीज है ये। इसके बारे में गालिबन मौलाना रोम ने ही फरमाया था कि ये बिल्कुल ऐसा है कि गधे पर तो इंसान किताबें लाद दे और मसीह पर गधे के पाला जो उसके ऊपर वो डालते हैं जिस पे सामान लोड किया जाता है उसको पाला कहते हैं। घोड़े पर भी जब हम वो डालते हैं तो पाला ही कहलाता है। बल्कि एक शेर था किसी का पर्शियन में, उसका एक ही मिसरा याद है, वो भी इसलिए याद रह गया कि एक जमाने में जब चीनी की बहुत किल्लत हो गई थी तो एक साहब दफ्तर में आए तो उनसे मैंने गलती की पूछने की कि वो उनको मजाकन हम चचा कहते थे इसलिए कि थे तो यंग लेकिन शक्ल से नजर आते थे कोई 80 साल के, तो हम उन्हें मजाकन चचा कहते थे। तो हमने कहा कि चचा यामीन क्या हाल है आपके, तो उन्होंने फौरन एक शेर पढ़ दिया कि अस्पताजी शुदा मजरू बबोजे पाला। तो वो यूं मुझे याद रह गया कि घोड़े पर भी पाला ही होती है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वो पाला लोड कर दिया जाए तो माले दुनिया को मताए दुनिया को फकीर लोग गधे से तशबीह देते हैं और रूह को तशबीह देते हैं मसीह से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। बात यह है कि जिस तरह दुनिया का बोझ उठाते उठाते गधे की पुश्त पर जख्म हो जाते हैं और उन जख्मों पर चीथड़े और दूसरी चीजें चिपक जाती हैं, तो अगर किसी तबीब के पास वो गधा चला जाए या कोई वैसे दर्द दिल रखने वाला इंसान उस गधे को देख ले तो उसके जख्मों पर चिपके हुए जो पीसीज हैं उनको रिमूव करता है। बाज का इतने सख्ती से चिमट गए होते हैं कि जब उसको उतारा जाता है तो गधे को शिद्दत से दर्द होता है तो गधा दुलती झाड़ देता है। तो इसी तरह जो पैगंबर हैं वो आते हैं जब दुनिया में और इंसान को सीधी राह दिखाते हैं तो उनकी मुखालफत होती है, नेकी की राह बताने वाले की हमेशा मुखालफत होती है। फकीर लोग दरवेश लोग इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके मुखालफिन की तादाद दोस्तों से कहीं ज्यादा होती है। तो रूहानियत में एक अंदाजा यह है कि फकीर के दोस्तों की तादाद 1/3 होती है और मुखालफिन की तादाद 2/3 होती है, इसलिए कि वो हक और नेकी की बात करते हैं, मुखालफत बहुत होती है। तो पैगंबर जब आते हैं खल्के खुदा को वो नेकी की राह दिखाते हैं, राह हक दिखाते हैं, तो उनकी मुखालफत बहुत होती है। और जितना ज्यादा किसी कौम ने अपने ऊपर जुल्म किया होता है जब पैगंबर उनको एहसास दिलाते हैं कि तुम अपनी जात पर जुल्म करते रहे हो अपने हाथों से, असल राह ये है, तो वो उनको अजियतें भी देते हैं, हत्ता कि आबाई शहर उन्हें छोड़कर चले जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल वो मिसाल है उसकी। अगर हम ये चाहते हैं जैसे कि आप सभी असाब के दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि हम रूहानियत के आला तरीन मकाम पर पहुंच जाएं, तो एक तो हमें इसके पीछे जो अंडरलाइंग पर्पस होता है हमारा, जो सबकॉन्शियस में दबी हुई चीज होती है, उसको पहले दिल से निकाल देना चाहिए कि जब मैं फकीर हो जाऊंगा, ये आप तो नेक लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे दिल में यही रहता है कि अगर मैं कहीं वलीला बन जाऊं तो मैं कश्फ के जरिए जमीन में छुपे हुए खजाने देख लूंगा, वो निकाल लूंगा, अमीर हो जाऊंगा, रेस के घोड़ों के नंबर देख लूंगा कश्फ में, मैं दुआ करूंगा फौरन कबूल हो जाएगी तो मेरे लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। फिक्र लाशऊर में जो मेरी छुपी है वो दुनियावी जिंदगी ही की है। मेरी जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी अगर मैं वली अल्लाह हो जाऊं तो, दुआ कर करके मैं अपने सारे काम सीधे कर लूंगा। मेरी औलाद की जिंदगी, या औलाद को जो आजमाइश कहा गया है वो इसी वजह से कहा गया है कि इंसान औलाद की मोहब्बत में सिरात मुस्तकीम की बसीरत खो देता है, वहां कोई असूल कोई कायदा नहीं रह जाता कि मोहब्बत इतनी शिद्दत से आड़े आती है कि हम राह से हट जाते हैं। हमें पहले तो ये अपने अंदर से निकालना होगा कि वली अल्लाह बनने के बाद हमें दुनियावी फवायद हासिल हो जाएंगे, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी औलाद मजे में आ जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। अगर ये मेरे जहन में रह जाए, अगर ये ख्याल रहे लाशऊर में कहीं दबा हुआ, तो इस राह पर चढ़ नहीं पाता, क्योंकि दर हकीकत तो जो हमारी फिर दुनिया ही पर है। तो पहले तो इसको लाशऊर से खुरेज कर हटाना होगा और फिर हमें हर वक्त रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचना होगा ताकि हमारी तवज्जो उधर को मरकूज रहे। तो फिर जब हम इबादत करते हैं तो देखिए कि उससे रूहानियत कितनी तेजी से हासिल होती है। एक सवाल है कि एक मुरीद अपने मुर्शद से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता हो, मुर्शद से मोहब्बत अपनी जगह बरकरार रहे, लेकिन अचानक उसे किसी अवैसिया बुजुर्ग वसालशुदा से भी लगाव महसूस होने लगे तो उसकी क्या हो जाए? इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। गालिबन इस सवाल के पीछे छुपा हुआ जो एक सवाल है वो ये है कि जो रूहानियत में असूल है कि अगर इंसान कहीं एक बार बैत कर ले तो फिर उसे सिर्फ अपने मुर्शद ही के पास जाना चाहिए, अपने मुर्शद ही की बताई हुई चीजें पढ़नी चाहिए। ये जो लगाव महसूस होने लगता है किसी गुजरे हुए शख्स के साथ, उसकी तीन वजूहात हैं। एक तो उन साहब की तवज्जो इंसान पर पड़ने लगे तो खुद इंसान के अपने दिल में भी लगाव और मोहब्बत महसूस होती है उन फौत हुए हुए बुजुर्ग के साथ। दूसरी वजह यह हो सकती है कि मल्टी चैनल फैज भी मिले हैं, जैसे जनाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, कि आपने बहुत से असातिज़ा से फैज हासिल किया, मुर्शिद एक थे लेकिन इक्तसाब फैज 105 असातिज़ा से किया है, लेकिन मुर्शिद एक ही रहे। एक रीजन वो हो सकती है कि वहां हमारा हमें फैज मिल रहा है वहां से। तीसरी चीज ये हो सकती है कि हम उनके हालात जिंदगी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये तीन वजूहात हैं। लेकिन इसमें अलार्म की कोई बात नहीं है, अब मुर्शद तो मुर्शद ही रहेगा, लेकिन अगर असातिज़ा उसके एक से ज्यादा हो जाए, वहां से फैज हासिल हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये ये कैसे पता चलता है कि हमारा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है? ये बहुत आसान चीज है। मैं शायद उस वक्त क्लास 6 या 7 में पढ़ता था, तो एक हदीस मेरी नजर से गुजरी थी, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं, एक्चुअल अल्फाज नहीं। उसका मफहूम यह था कि अगर कोई शख्स ये देखना चाहे कि रब मुझसे राजी हो गया कि नहीं, तो ये देख ले कि खल्क खुदा उससे राजी है या नहीं। इस हदीस से दो चीजें हमें मिल जाएंगी, एक तो ये जो सवाल है कि रब राजी हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इंडिकेशन है कि खल्क खुदा उससे राजी होने लगती है। दूसरा इससे एक सबक है कि रब को अपनी मखलूक इतनी ज्यादा पसंद है कि अगर रब को राजी करना है तो उसके बंदों को राजी रखा जाए, उसके बंदों की खिदमत की जाए, उसके बंदों के लिए जो हदीस है कि तुम में सब में अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो, जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। ये अहादीस जो मैं कोट करता हूं उनके अल्फाज वो नहीं होते, मैं उसका मफहूम कोट कर रहा होता हूं, इसलिए चूंकि हम लोग ज्यादा पर्टिकुलर हैं कि अल्फाज मफहूम बेशक बदल जाए लेकिन अल्फाज वो रहने चाहिए, तो इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि अल्फाज वो नहीं होते जो हदीस में है लेकिन उसका मफहूम मैं बयान कर रहा होता हूं। तो हम में से सबसे ज्यादा बेहतर शख्स वो है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, खल्क खुदा को फायदा पहुंचे, ये हदीस है। और हम में से सबसे बुरा शख्स वो है कि जिसके शर से मखलूक खौफजदा रहे, ये भी हदीस है। तो ये इन दोनों अहदीस को और तीसरी उस हदीस को देखें अगर हम मिला के, तो उससे हम एक नतीजा निकालते हैं कि अगर हमने अपने रब को राजी करना है तो उसकी मखलूक की खिदमत की जाए, उसकी मखलूक के लिए फायदेमंद हो जाए हम, तो रब राजी हो जाएगा हमसे। ये अगला सवाल है, तौबा की कबूलियत की क्या निशानी है? सब शायद ये सवाल पूछने के लिए मैं मुनासिब आदमी नहीं, क्योंकि एक तौबा की कबूलियत और इसी तरह और बहुत सी कई एक चीजें उसके अंदर मैं इल्म के पीछे नहीं जाता, बल्कि मैं चूंकि बुनियादी तौर पर जाहिल आदमी हूं तो मेरा रब पर यकीन और ईमान और अकीदा भी जाहिलाना है कि आंखें बंद करके अपने रब पर यकीन और ईमान रखता हूं मैं। तो मैंने अपने रब को जैसा पाया है वो तो ये है कि वो बड़ा मेहरबान, बहुत ही रहम करने वाला, बड़ा रहीम और करीम, बड़ा गफूर और रहीम, उसको बहुत मेहरबान पाया मैंने। तो चूंकि उसको देखा ही मैंने उसके उस रंग में है कि उससे ज्यादा किसी को मैंने मेहरबान पाया ही नहीं, उससे ज्यादा गफूर और रहीम किसी को नहीं पाया, उससे ज्यादा रहीम और करीम किसी को नहीं पाया, उससे ज्यादा बड़ा रहमान किसी को नहीं पाया। तो मैं अपने रब के बारे में गुमान ये करता हूं कि वो उससे अगर मैं एक बार माफी मांगूंगा तो वो पेशतर इसके कि मेरा जुमला भी खत्म हो मुझे माफ फरमा देगा, क्योंकि रहीम और करीम ही इतना है, वो गफूर रहीम ही इतना है। तो जब तौबा करूंगा मैं तो इस यकीन के साथ करूंगा कि मेरा रब इस इंतजार में है कि मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे तो सही, एक बार अपने गुनाहों से तौबा तो करे एक बार, तो मैं उसको माफ भी कर दूंगा और उसकी तौबा भी कबूल कर लूं। क्योंकि तौबा के अपने मराहिल हैं, मदारज हैं। जब तक कि मैं पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होता, अपनी गलतियों और कोताहियों पर मैं शर्मिंदा नहीं होता, मैं उस वक्त तक माफी नहीं मांग सकता। तो पहली बात तो यह है कि मुझे ये एहसास तो हो कि मैंने गुनाह किए, मैंने गलती की, मैंने कोताही की। इसलिए बुजुर्ग ये कहते हैं कि किसी को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो समझ लीजिए कि उसने आधा मामला दुरुस्त कर लिया। एहसास तो हो पहले कि मैं गलती कर रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, कोताही कर रहा हूं, मुझसे खता हो गई। तो जब वो एहसास हो जाए तो मैं उस पर पछतान हूंगा, शर्मिंदा हूंगा। तो जब शर्मिंदा हूंगा तो मैं रब से माफी मांगूंगा, और माफी मांगने के बाद मैं आइंदा के लिए वादा कर रहा हूंगा रब से कि या बारी ताला मुझे मेरे पिछले गुनाहों, कोताहियों और खताओं के लिए माफ फरमा दे और मैं तौबा करता हूं, आइंदा यह गलती नहीं करूंगा। तो इसमें आ गया गुनाह का एहसास, गुनाह पर पछतावा, गुनाह की माफी और वादा के आइंदा नहीं करूंगा। तो ये तौबा के चार जुज बन जाएंगे। तो वैसे तो इसको हम बड़े मुख्तसर जुमले में बता कह सकते हैं कि तौबा क्या है। ये जफा, हालत जफा से हालत वफा तक का सफर तौबा है। तो हम जब तौबा कर लेते हैं तो जफा से वफा में दाखिल हो जाते हैं। तो रब ताला पर ये उसका अपना फरमान भी है कि मुझसे अच्छे गुमान रखो, मैं अच्छा ही करूंगा। तो अपने रब के बारे में यह गुमान रखिए कि वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है, बड़ा गफूर रहीम है। वो उससे बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं है। तो जब ये ईमान आ गया तो शक में आता ही नहीं कि मैंने तौबा की तो कबूल हुई या नहीं हुई। फौरन ही ये ख्याल आता है कि मेरा रब तो इतना अजीम तरीन है, इतने बड़े जर्फ का मालिक है कि उस जैसा कोई नहीं। तो उसके जर्फ से, उसकी आला जर्फी से ये पुख्ता यकीन है कि जब मैं उससे माफी मांगूंगा, तौबा करूंगा सच्चे दिल से, तो चूंकि वो दिलों के हाल जानता है तो मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। ये मैंने ये बात शुरू करने से पहले अर्ज किया था कि मैं दुरुस्त आदमी नहीं हूं ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि मैं इसमें इल्म को दखल नहीं देने देता, इसमें मैं अपने जज्बे ही पर काउंट करता हूं। जो शख्स हर हाल में शाकिर और अल्लाह की रजा में राजी रहता हो, क्या उसके लिए नेमतों में इजाफे का तालिब होना दुरुस्त है? इस सवाल के दोनों हिस्से कंट्राडिक्टरी हैं। असल में एक दूसरे की तंसीख करते हैं कि जो आदमी शाकिर है, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की रजा में राजी रहता है, वो नेमतों में इजाफे का तालिब हो ही नहीं सकता। इसलिए कि रब की रजा पर राजी जो हो गया उसकी तो उसको तो डिफाइन ही हम इस तरह से करते हैं रजा में राजी होने को कि जो अता हो गया उस पर खुश है वो। तो जो कुछ अता हुआ है, जब इंसान उसी पर खुश है, उसी पर राजी है, तो वो इजाफे का मुंतजर कैसे होगा? तो जो इजाफे का मुंतजर है फिर वो दिल में साबिर और शाकिर नहीं है, वो राजी बरजा नहीं है। ये फकीर लोग कमाल के लोग होते हैं। किसी ने सच कहा था कि फकीरों के पास जब जाओ तो बहुत होशियारी से क्योंकि ये लोग बहुत चालाक होते हैं कि दिल के राज भांप लेते हैं। जनाब बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि जो जमा करता है वो फकीर नहीं हरीस है, क्योंकि जब इंसान जमा करने लगता है माले दुनिया तो हिर्स में मुब्तला होता है और हिर्स दुश्मन है शुक्र की, सब्र की और राजी बराजा रहने की। यह हिर्स हमें रहने ही नहीं देती, ना हालत शुक्र में, ना सब्र में और ना रजा में। तो इंसान अमेरिका बन जाता है, डू मोर गेट मोर शुरू हो जाता है वहां। तो इसलिए बाबा फरीद साहब ने क्या कमाल की एक मुख्तसर सी बात फरमाई कि जो जमा करता है वो फकीर नहीं हरीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि तसव्वुफ के कुछ सलासल में बाकायदा बैत और मखसूस औराद वज़ाइफ मुकर्रर हैं, जबकि कुछ सलासल में हाथ पर हाथ रखकर न तो बैत की जाती है न कोई मखसूस विर्द दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? कोई फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ हमें एक चीज देख लेनी चाहिए कि एक तो नियत है और दूसरे जाहरी अतवार हैं। नमाज की नियत हम दिल में करें, जुबान से कहना कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंने ये नियत कर ली कि मैं असर की नमाज पढ़ने लगा हूं तो मेरी नियत हो गई नमाज की, लेकिन फिर भी मुनासिब यह है कि जुबान से भी मैं अर्ज कर दूं अल्लाह के हजूर। तो नमाज असर की मैं नियत जुबान से भी दोहरा दूंगा। अब अगर कोई बैत कर रहा है या बैत ले रहा है तो मामला नियत का और दिल का है सारा, लेकिन किसी को यकीन दिलाने के लिए अगर हाथ में हाथ लेकर बैत कर ली जाए जो मसनून तरीका है तो दूसरे आदमी की तसल्ली हो जाती है। सिलसिला साबरिया में आमतौर पर, मैं आमतौर पर कह रहा हूं, हमेशा नहीं, ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं जो निगाहों से बैत करते हैं। आदमी आया, उसको परखा कि ये इल्म के लिए आया है और ये चाहता है कि उसकी तरबियत कर दी जाए, तो उसको अपने हल्का इरादत में कबूल कर लिया दिल से। आने वाला तो आया ही इस नियत से था, तो वो उसको कहते हैं कि निगाहों से बैत हो गई, आंखों से। वो जाहरी उस पर नहीं जाते, लेकिन बेहतर यह है कि उस तरीके से बैत कर ली जाए हाथ में हाथ देके, ताकि दूसरे की तसल्ली हो जाए, क्योंकि मुर्शिद तो अपने यहां क्लियर है बिल्कुल, या यूं कहिए कि वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इसे अपने शागिर्द के तौर पर कबूल किया, मैं इसकी तरबियत भी करूंगा, इसको इल्म भी दूंगा। और इसी तरह यह है कि औराद हैं कि मखसूस विर्द दे दिया जाता है, ये सभी देते हैं, चाहे वो निगाहों से बैत कर रहे हों, चाहे वो जुबान से बैत कर लें, चाहे वो हाथ में हाथ देके बैत करें दूसरे के, लेकिन विर्द दिया जरूर जाता है। अलबत्ता ये है कि कुछ लोग इतने आला जर्फ के होते हैं, कुछ मुर्शद, कुछ फकीर, फकीर जनरली ظرف کا بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں. وہ مریض کو بتاتے نہیں کہ یہ مخصوص ذکر ہے جس کو تم کرو. اس کو کہتے ہیں یہ پڑھا کرو میاں، اس وقت اتنی تعداد میں پڑھ لو. بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے سلسلے کا مخصوص ورد ہے. ایک ورد مجھے عطا ہوا کہیں سے. کچھ چیزیں ہیں ان کو آدمی پوری طرح کھول کر بیان نہیں کر پاتا. میرا خیال ہے کہ یہ لاسٹ ڈیز تھے میرے مرشد صاحب کے. تو کسی جگہ میں گیا ہوا تھا تو وہ ورد مجھے عطا ہو گیا. بڑا مختصر اور بظاہر اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے مجھے معاف کرے کہ کوئی اتنے مشقت والا نہیں تھا کہ آدمی متاثر ہو کہ وہ یہ تو بڑا زبردست ورد ملا. بڑا سیدھا سادہ سا ورد. غالباً 18 سال تک مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ یہ ورد کس سلسلے کا ہے، کیونکہ وہ کہیں مجھے کتاب میں ملتا نہیں تھا. بتیری تگو دو کی بہت تلاش میں رہا کہ یہ جو ورد دیا گیا ہے یہ کس سلسلے سے اس کا تعلق ہے. تو شاید اس کا وقت نہیں آیا تھا کہ مجھ پر ڈسکلوز ہوتا. کوئی 18 سال کے بعد سڈنلی ایک دن میرے اوپر کھل گئی وہ بات کہ یہ تو سلسلہ جو نیدیا کا ورد ہے جو عطا ہوا. اب وہ 18 سال میں اسی تجسس میں لگا رہا کہ پتہ تو چلے کہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے یہ ورد. تو پتہ چلا کہ تو جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ورد فرماتے تھے. ایک ورد کہیں اور سے عطا ہوا، وہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ ورد ہے کیا. پڑھ رہا ہوں اور اس بات کو میرا خیال ہے شاید 35 سال گزر گئے ہیں، اس میں ناغہ نہیں آنے دیا، پڑھتا ہوں. لیکن یہ نہیں پتہ چلا ہے کہاں کا. عطا ہو گیا اور عطا بھی ان سے ہوا جن کے انتقال کو شاید 700 سال گزر گئے ہیں. انہیں کہا یہ پڑھا کرو میاں جاؤ. 35 سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس سلسلے کا ہے. تو ورد تو عطا ہو جاتا ہے لیکن بعض کا بتاتے نہیں کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہ بتاتے نہیں کہ کیا ہے. یہ اتنا مشکل لفظ لکھا کہ اس کے اگر میں ہجے کروں تو آدھا گھنٹہ چاہیے ہجے کر کے پڑھنے میں. جب کہیں 2-4 صدیاں پہلے میں نوجوان تھا تو کسی جگہ پڑھا تھا شیکسپیئر کا ایک قول کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام سلیس زبان لکھنا ہے اور بولنا ہے. تو جن یوں وقت گزرا پتا چلا کہ شیکسپیئر نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو سلیس زبان میں گفتگو کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. 96 میں ایک چینل ہوتا تھا STN، اس پر ایک پروگرام میرا آ رہا تھا ایسا کیوں. تو جناب اشفاق احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ملے تو کمال کی ایک بات انہوں نے کہی، جو دانشور ہے وہ دانشور ہی ہوتا ہے، तो कहने लगे कि यार सरफराज, ओ यार जिन्नी आसान जबान तू बोलना है इन्नी मैं नहीं बोल सकता। ये उनके कहने का अंदाज था। उन्होंने कहा अशफाक साहब, अशफाक साहब तो कादिर थे इस बात पर कि जैसी जुबान चाहे इस्तेमाल कर लें, सलीस, मुश्किल, मुश्किल तरीन। वो बंदा एक अहद था अपनी जात के अंदर। अल्लाह ताला उन्हें आला तरीन जन्नत के दर्जे से नवाजे। लेकिन एप्रिसिएशन का उनका एक ये अंदाज था कि उन्होंने ये बात कह दी। वो मेरी बेवकूफी होती अगर मैं उसको उन अल्फाज में ही समझ जाता। तो ये लिखना आसान जुबान, लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा जो इन्होंने लिख दिया कि क्या तकर्रब इलाही और तकर्रब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ाइफ का रोशन होना जरूरी है। कतई तौर पर नहीं। बात यह है कि इंसान के जिस्म के, रूह के लताइफ, ये तो जब इंसान कुर्बे इलाही के तलब का राही हो जाता है और उस रास्ते पर चलता है, तो कदम ब कदम जब आगे बढ़ता हो, बढ़ रहा होता है, तो उसकी रूह के लताइफ खुद ब खुद रोशन होने लगते हैं। ये महसिल है उस शौक का जो इंसान के दिल में भड़कता है कि मुझे मेरा रब चाहिए, मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए, मुझे वो कुर्ब चाहिए है वहां का, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इब्तदा तो वहां से है जब वो दिल में ये ख्वाहिश जागे और उस ख्वाहिश से मजबूर होकर इंसान उस रास्ते पर कदम उठा ले। तो जब थोड़ा सा चलेगा उस राह पर तो लताइफ खुद ब खुद जागेंगे और रोशन हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।